आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अनुराग शर्मा की कहानी बांधों को तोड़ दो, उन्हीं की आवाज में। ये लोग कौन होते हैं आपको रोकने वाले, ऐसे कैसे बंद कर देंगे? उन्होंने कहा, आपने मान लिया। चोर डाकू जेब कतरे सब तो खुलेआम घूमते रहते हैं इन्हीं सड़कों पर, सारी दुश्मनी सिर्फ रिक्शा से निकाल रहे हैं। इसी रिक्शे की बदौलत शहर भर में हजारों गरीबों के घर चल रहे हैं। उनका क्या जो स्कूल दुकान दफ्तर रिक्शा से जाते हैं? क्या वे सब लोग अब कार खरीद लेंगे? बेटा राम सिंह बहुत गुस्से में था। गुस्से में तो हरिया खुद भी था, परंतु वह अब इतना समझदार था कि अपने आंसू पीना जानता था। लेकिन बेचारे बच्चों को दुनिया की समझ ही कहां होती है। वे तो सोचते हैं कि संसार में सब कुछ न्याय के अनुसार हो, और फिर राम सिंह तो शुरू से ही ऐसा है। कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो उसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गुस्सा आता है। इस दुख की घड़ी में जब हरिया बड़ी मुश्किल से अपनी हताशा को छिपा रहा है, उसे अपने बेटे पर गर्व भी हो रहा है और प्यार भी आ रहा है। हरिया को लगता है कि बस 2-4 साल रिक्शा चलाने की मोहलत और मिल गई होती तो इतना पैसा बचा लेता कि राम सिंह को स्कूल भेजना शुरू कर देता। अब तो लगता है कि अपना सब सामान रिक्शे पर लादकर किसी छोटे शहर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर सभी रिक्शे वाले एक हो जाएं और ये गलत हुक्म मानने से मना कर दें तो सरकार चाहे कितनी भी जालिम हो उन्हें रोक नहीं पाएगी। अभी चुप नहीं हुआ है राम सिंह। उसे इस तरह गुस्से में देखकर हरिया को 30 साल पुरानी बात याद आती है। हरिया यहां नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल अपने छोटे से राम के बराबर है, बल्कि उससे बहुत ही छोटा। गांव की पुरानी झोपड़ी में खपड़ैल के बाहर अधनंगा खड़ा है। पिताजी मुंह लटकाए चले आ रहे हैं। वो हमेशा की तरह खुश होकर उनकी गोद में चढ़ने के लिए दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसे गोद में लेने के बजाय पिताजी खुद ही जमीन पर उकड़ू बैठ जाते हैं। पिताजी की आंख में आंसू हैं। माँ तो खाना बनाते समय रोज ही रोती है, मगर पिताजी वे तो कभी नहीं रोते, तो आज क्यों रो रहे हैं? वो अपने नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछकर पूछता है, क्या हुआ बाबा, रोते क्यों हो? बेटा हरिराम, हमें अपना घर ये गांव सब छोड़कर जाना पड़ेगा। पूछने पर पता लगा कि उनके गांव और आसपास के सारे गांव डुबोकर बांध बनाया जाने वाला था। नन्हा हरिया नहीं जानता था कि बांध क्या होता है, लेकिन उस वय में भी उसे ये बात समझ में आ गई कि यह उसके घर द्वार कोठार नीम शमी खेत और गांव को डुबोने की योजना है। कोई उसके घर को डुबोने वाला है, ये ख्याल ही उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। फिर भी उसने पिताजी से कई सवाल पूछे, ये लोग कौन है जो हमारा गांव डुबा देंगे? ये सरकार है बेटा, उनके ऊपर सारे देश की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार लोग हमें बेघर क्यों करेंगे? वे हत्यारे कैसे हो सकते हैं? हरिया ने पूछा। वे हत्यारे नहीं हैं, वे सरकार हैं। बांध से पानी मिलेगा, सिंचाई होगी, बिजली बनेगी, खुशहाली आएगी। सरकार कहाँ रहती है? बड़े बड़े शहरों में बेटा, कानपुर कलकत्ता दिल्ली। बिजली कहाँ जलेगी? उन्हीं बड़े शहरों में, कानपुर कलकत्ता दिल्ली और भी बहुत से।
तो फिर बांध बनाने के लिए कानपुर कलकत्ता दिल्ली क्यों नहीं डुबोते ये लोग? हमें क्यों जाना पड़ेगा घर छोड़कर?
ये त्याग है बेटा। अम्मा ने दधीची और पन्ना धाई की कहानियां सुनाई थी ना, याद है?
तो ये सरकार त्याग क्यों नहीं करती? तब भी हमने ही किया था, अब भी हम ही करें?
पिताजी अवाक अपने हरिराम को देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज वो अपने राम सिंह को देख रहा है। हरिया ने अपनी बाह से आंख पोंछ ली। राम सिंह अभी भी गुस्से में बोलता जा रहा था। रधिया एक कोने में बैठकर खाने के डब्बों को पुरानी चादर में बांध रही थी, ठीक वैसी ही दुबली और कमजोर जैसे अम्मा दिखती थी 30 साल पहले। धन्यवाद।